श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन, और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी है, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभुष्य के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं, और हमेशा की तरह आज फिर से अपने मित्रों के साथ और परिवार वालों के साथ परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबकी जानकारी के लिए फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से जकरिया नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, और पिछले अध्ययन में हमने इसके परिचय और उसके एक से छह पद तक का अध्ययन किया। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन दूर में बैठ करके भी एक साथ रेडियो के माध्यम से आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। आज जब हम जकरिया नबी की पुस्तक से सीखते हैं, वचन पर मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जो भी वचन आज वे सुनते हैं उनके जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन की उन गदगियों को, उन बुराइयों को दूर करने पाए और उनके जीवन में असीम शांति पनपने पाए। पिताजी, आज की इस घड़ी हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो बीमार और निराश हैं, परेशान और चिंता में हैं, तनाव में हैं, किसी न किसी कारण से अपने जीवन को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। प्रभु, आप उनके मनों को छुए, उनसे बातचीत करें, ताकि वे समझने पाएं कि आपने उन्हें बनाया है, आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं। प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा आप उन्हें सामर्थ्य प्रदान कीजिए, ताकि वे आप पर विश्वास लाने पाएं। आज के वचन पर अपनी आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम जकरिया के पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम सब देख रहे हैं कि बेबीलोन की बंधुआई से लौटने पर इसराइली उत्साह के साथ अपने नगर और मंदिर के पुनर्निर्माण में लग गए थे, परंतु बैरियों के विरोध और विषम परिस्थितियों के कारण वे निराश होकर बैठ गए। इसी समय हग्गै भविष्यद्वक्ता ने उन्हें मंदिर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, उन्हें प्रोत्साहन दिया और उसके 2 माह बाद ही परमेश्वर ने जकरिया को उनके प्रोत्साहन और चेतावनी के लिए भेजा कि उन्हें सावधान करे कि वे अपने बाप दादों के समान परमेश्वर से दूर न हो जाएं, कि परमेश्वर के दंड उनके ऊपर आ जाए। जकरिया का संदेश अधिकांश भाग में दर्शनों में ही पाया जाता है। तो मेरे मित्रों, आइए हम आगे देखते हैं 10 दर्शन। अधिकांश टीकाकारों के अनुसार जकरिया के 8 दर्शन हैं, परंतु हम उनका विभाजन करके उन्हें 10 दर्शन में देखेंगे। मेहदी में घुड़सवार, पहला दर्शन है घोड़ों और मेहदी में घुड़सवारों का। जकरिया की पुस्तक 1 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, दारा के 2वें वर्ष के शबात नामक 11वें महीने के 24वें दिन को जकरिया नबी के पास, जो बेरक्याह का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का वचन यों पहुंचा। मेरे मित्रों, इब्रानी कैलेंडर में पहला महीना जनवरी का नहीं होता है, या यूं कहें कि नहीं होता था, इसलिए उनका 11वां महीना हमारे फरवरी महीने में आता है। अतः यह तिथि है फरवरी 24, 520 ईस्वी पूर्व। इसका महत्व हम अभी कुछ ही देर में देखेंगे। हम 1 मिनट के लिए इसकी पृष्ठभूमि पर ध्यान देना चाहेंगे। 5 महीने पहले परमेश्वर ने हग्गै को दर्शन देकर स्वदेश आने वाले इसराइलियों को मंदिर के पुनः निर्माण की चुनौती दी थी और उन्होंने मंदिर का पुनः निर्माण कार्य आरंभ कर दिया था। जकरिया के दर्शन से 2 माह पूर्व हग्गै ने याजकों को कठोर वचन सुनाया था कि वे अशुद्ध होकर भी परमेश्वर से आशीषों की अपेक्षा या उम्मीद कर रहे थे। उसका संदेश मंदिर निर्माण में विलंब से संबंधित भी था। क्योंकि वे मंदिर निर्माण में संकोच भी कर रहे थे। हगै ने परमेश्वर के राज्य की स्थापना से पूर्व अन्य जाति विश्व शक्ति के विनाश की भविष्यवाणी भी की थी। उसने कहा था कि संसार पर राज्य करने वाला यरूशलेम के वर्तमान अधिपति जरुबाबेल का वंशज मसी होगा और जरुबाबेल दाऊद के राजसी वंश से था। इसी बीच जब मंदिर का पुनः निर्माण कार्य चल रहा था तब जकर्याह ने 10 दर्शन देखे। आइए हम पढ़ें जकर्याह 1 उसके 8 पद में लिखा है, मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है और उसके पीछे लाल और भूरे और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। मेरे मित्रों आप सोचेंगे कि जकर्याह स्वप्न देख रहा था। जी नहीं, ये वास्तव में दर्शन थे और ऐसे दर्शन देखकर नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आएगी। मेरा मानना है कि परमेश्वर स्वप्न में और दिन में दर्शन देकर बात नहीं करता है। बहुत से लोग मुझसे सहमत नहीं हैं। जब कोई मुझसे कहता है कि मैंने स्वप्न में यह देखा तो मैं उन्हें टोकता नहीं हूं, परंतु बस यही पूछता हूं कि उन्होंने स्वप्न में दर्शन देखा था। यदि ऐसा है तो वह परमेश्वर का दर्शन नहीं परंतु उनके रात्रि भोजन का परिणाम था या दिन के किसी अनुभव के कारण था। सोते समय हमारा मस्तिष्क स्वतंत्र होकर पुरानी बातों को स्मरण करता है जिसके कारण हमें स्वप्न दिखाई देते हैं। अतः निश्चित जानिए कि स्वप्न परमेश्वर का संदेश नहीं लाते हैं। यहां पर लिखा है क्या देखा। यहां यह जानना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता जकर्याह पर स्वयं को कैसे प्रकट किया। वह हमारा ध्यान आकर्षित कराते हुए नाटकीय रूप से कहना चाहता है, देखो एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहदियों के बीच खड़ा है। वह पुरुष कौन था? देह धारण से पूर्व का प्रभु यीशु था। अब आप पूछेंगे, आपको कैसे मालूम कि वह प्रभु यीशु ही था? पद 11 और 12 में लिखा है, यहोवा के दूत। पुराने नियम में व्यक्त यहोवा का यह दूत नए नियम का प्रभु यीशु है। वह उपस्थिति का दूत है, यहोवा स्वयं है, वह मसीह है। देह धारण से पूर्व के प्रभु यीशु को जकर्याह देख रहा है कि वह संसार की चौकसी कर रहा है। निसंदेह शैतान को इस संसार का राजकुमार कहा गया है क्योंकि सांसारिकता अर्थात संसार का राजतंत्र उसके अधीन है, परंतु परमेश्वर ने यह पृथ्वी उसके हाथ में नहीं छोड़ी है। यहां भी प्रभु यीशु मेहदियों में खड़ा अपने लोगों की सुधि ले रहा है। वह इसराइल की चौकसी कर रहा है। यह एक अति शांतिदायक बात है कि इस असीम ब्रह्मांड में जगत का परमेश्वर अपनों की सुधि लेता है। इस दर्शन का संदेश हमारे लिए कैसा महान है। मेरे प्रियो, जकर्याह शांति के अनेक संदेश देगा और निश्चय ही यह संदेश उनमें से एक है। यहां पर आप ध्यान दें कि घोड़े का रंग लाल है। लाल रंग लहू का और रक्तपात का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लाल रंग युद्ध में रक्तपात का प्रतीक है। यहां घोड़े का लाल रंग उसके सवार प्रभु यीशु द्वारा मानव जाति के लिए लहू बहाने का प्रतीक है। यह अनुपम दृश्य है। लिखा है उसके पीछे लाल और भूरे और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। यद्यपि वहां यह तो नहीं लिखा है कि उन घोड़ों पर सवार थे, परंतु हमारा मानना उचित ही होगा कि उन पर भी सवार थे। यहाँ परमेश्वर हमें पूरा विवरण नहीं देता है, परंतु वे स्वर्ग दूत थे। उनका दायित्व था कि वे पृथ्वी की चौकसी करें और अपने सेनापति प्रभु यीशु को रिपोर्ट दें। मेरे विचार में घोड़ों के रंगों का अपना अपना महत्व है, लाल रंग, भूरा रंग और श्वेत रंग। जब मैं छोटा था तब भूरे घोड़े को गंदा पीला समझता था। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, परंतु मुझे वे ऐसे ही लगते थे। लाल रंग युद्ध का प्रतीक है और श्वेत रंग का अर्थ है जय पाते हुए आगे बढ़ना। भूरा रंग इन दोनों का संयोजन प्रकट करता है। लिखा है मेहदियों के बीच खड़ा है। मेहदी भी इसराइल देश की पहचान है। वहां अनेक मेहदी की घाटियां हैं, जैतून, अंजीर, मेहदी और दाख आदि सब का अपना अपना महत्व है। यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहदी और जैतून उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोबर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा। और यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय उसके 13 पद में वह कहता है तब भटकटाइयों के बदले सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहदी उगेगी और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी न मिटेगा। मेरे प्रियो, आज के इसराइल में वृहत वृक्षारोपण अभियान में मेहदी लगाई जा रही है जिसका कोई महत्व अवश्य है। झोपड़ियों के पर्व में खजूर की डालियों के साथ मेहदी की डालियों द्वारा झोपड़ियां बनाई जाती थी। मेहदी का इब्रानी शब्द एस्तेर है, अतः दोनों नाम एक ही हैं। लिखा है मेहदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थानों में है। नीचे से उसका अभिप्राय है घाटी में। मेहदी घाटी में उगती थी क्योंकि वहां पानी होता था। घाटी में मेहदी इसराइल की दशा का प्रतीक थी क्योंकि इसराइल उस समय बहुत ही बुरी दशा में था। मेरे विचार में लाल घोड़े का सवार अर्थात प्रभु यीशु उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है जब वह इस पृथ्वी पर राज करेगा, परंतु उस समय तक वह पृथ्वी की चौकसी में गश्त लगाता रहेगा। और अन्य घुड़सवार स्वर्गदूत हैं जो उसके साथ चलते हैं। मेरे मित्रों, आगे लिखा हुआ है जकरिया की पुस्तक 1 अध्याय उसके 9 पद में तब मैंने कहा हे मेरे प्रभु ये कौन है। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा मैं तुझे बताऊंगा कि ये कौन है। लिखा है तब मैंने कहा हे मेरे प्रभु ये कौन है। हमारा भी यही प्रश्न है, अतः सुनिए कि वह क्या कहता है। जकरिया 1 अध्याय उसके 10 पद में फिर जो पुरुष मेहदियों के बीच खड़ा था उसने कहा यह वे हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है। घूमने के लिए अर्थात पृथ्वी पर गश्त लगाने के लिए भेजा है। जकरिया 1 अध्याय के 11 पद में लिखा है तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से जो मेहदियों के बीच खड़ा था कहा हमने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। लिखा है सारी पृथ्वी में शांति और चैन है अर्थात उस समय पृथ्वी पर शांति थी। यह तो अच्छी बात है क्योंकि इतिहास के 5000 वर्षों में केवल 200 वर्ष के लगभग ही शांति रही है। मनुष्य खूंखार युद्ध करने वाला प्राणी है, उसके मन में युद्ध चलता ही रहता है। अतः शांति का समय अति महान होता है। यह शांति कैसी थी? यह ऐसी शांति थी जो क्षणिक थी, थोड़े समय के लिए थी। जकर्या एक अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, इसलिए तू उन पर कब तक दया न करेगा? लिखा है, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है। यरूशलेम 70 वर्षों से उजाड़ पड़ा था। स्वदेश लौटने वाले यहूदी पुनः निर्माण तो कर रहे थे, परंतु उनकी पुकार थी कि परमेश्वर की आशीषों के आने से या आने में कितना समय और लगेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर स्पष्ट करेगा कि वह उन राष्ट्रों से प्रसन्न नहीं है जो शांति में वास करते हुए यरूशलेम की दुर्दशा के प्रति उदासीन थे। परमेश्वर यरूशलेम के लिए जलन रखता है। परमेश्वर ने यरूशलेम को दया दिखाई है, जो अन्य सब जातियों का यह उत्तरदायित्व है कि वे यरूशलेम के लिए सोचें। अतः उनकी शांति क्षणिक है। जी हां मेरे मित्रों, यह संदेश हमारे लिए भी है। संसार में स्थायी शांति तब तक नहीं आएगी जब तक प्रभु यीशु यरूशलेम में राज्य स्थापित नहीं करेगा। वह शांति का राजकुमार है। तब तक वह पाप क्षमा द्वारा परमेश्वर के साथ मेल कराता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति में रह सकते हैं और सब देश परस्पर शांति में रह सकते हैं। परंतु सभ्य संसार ही ने तो 2 विश्व युद्ध किए हैं। उस समय अमेरिका के सैनिकों ने कुछ पिछड़े क्षेत्रों में नरभक्षियों से सामना करने की अपेक्षा की, परंतु इसके विपरीत उन्हें कलीसियाएं और विश्वासी मिले जिन्होंने सहस उनका स्वागत किया। ये पिछड़े लोग तो शांति में थे, परंतु विश्वासी युद्ध कर रहे थे। प्रभु यीशु के बिना संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। मेरे मित्रों, विश्व शांति की कुंजी यरूशलेम है। जकर्या के युग में संसार शांति लाने का प्रयास तो कर रहा था, परंतु यरूशलेम को महत्व नहीं दे रहा था। वह मादी फारसियों का राज था। बेबीलोन ने मिस्र और अश्शूर देशों को पराजित किया था। उसके बाद मादी फारसियों ने बेबीलोन को जीत लिया और सिंधु नदी से लेकर भूमध्य सागर तक का क्षेत्र उनके अधीन हो गया था। उस समय संसार में क्षणिक शांति आई थी, परंतु यह शांति अधिक समय की नहीं थी, क्योंकि पश्चिम दिशा से सिकंदर महान आने वाला था। शांति अस्थायी नहीं हो सकती थी, क्योंकि यरूशलेम मुख्य स्थान था जहां शांति स्थापित होना था। जकर्या की पुस्तक 1 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुझसे बातें करता था अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। मेरे प्रियो, ये शब्द इसराइलियों के लिए शांतिदायक वचन थे। इस समय हग्गै दंड की चेतावनी दे रहा था, परंतु जकर्याह परमेश्वर की शांति का संदेश सुना रहा था। आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, वचन के द्वारा शांति की संदेश पहुंचाता है। यदि हम उसको ग्रहण करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसको मानते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं, तो निश्चय ही हमारे जीवन में शांति आती है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं नहीं जानता कि आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में इस समय शांति है या नहीं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि शांति केवल प्रभु यीशु के द्वारा है, क्योंकि वही शांति का राजकुमार है। आप शांति की खोज करें, कहीं भी आप चले जाएं, परंतु आप कहीं शांति को प्राप्त नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा ही आप शांति को प्राप्त कर सकते हैं, अनंत शांति को पा सकते हैं। और वह इसलिए क्योंकि वह शांति का राजकुमार है। उसने सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर में ले लिया है। वह क्रूस पर बलि हो गया है ताकि वह उस विजय के द्वारा आपको शांति देने पाए। मेरे प्रिय मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, आपने इस बात को जान लिया है कि शांति कहां मिलती है। आप सही निर्णय लें, प्रभु की निकटता में आए और उसे प्राप्त करें। प्रभु आपकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दें।